ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆத்மா சே க்யோ பிரேம் ஜாதா கரதே ஹோ, லோக் துனியா சே க்யோ நஹீ கரதே ஹோ, துனியா மே கித்னா ஆனந்த் ஹை, கித்னி மௌஜ் ஹை. पर जहां जहां मौज है वहीं वहीं मौत है जी. मर्ज का तो इलाज हो सकता है पर मौत का इलाज नहीं होता जी. जहां जहां मौज है वहां वहां मर्ज नहीं है, मौत है जी. वहां वहां इतनी विपत्तियां हैं कि कभी कभी तो ऐसा अंधेरा छा जाता है व्यक्ति की जिंदगी में कि क्या करें जी. लेकिन एक बात सच्ची है कि आप ये घटनाओं से चिपक कर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका चिपकना स्वभाव नहीं है. तमाम घटनाएं आती जाती रहती हैं. अच्छा, तो आप देखिए प्रेम के संबंध में कि सबसे ज्यादा प्रेम आत्मा से होता है, और होता इसलिए है कि आत्मा आनंद स्वरूप है. अच्छा, कोई सर्प से प्रेम करता है? कोई शत्रु से करता है? नहीं करता है. विष से? कोई नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? उसे सुख नहीं मिलेगा. तो विष से कौन प्रेम करेगा? शत्रु से कौन प्रेम करेगा? जो हमारे दुख का हेतु होगी उससे प्रेम कोई नहीं करेगा. पर कभी कभी व्यक्ति को, कभी कभी क्या, अधिकांश स्थिति ऐसे ही है कि हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जिसमें हमारी मौत है, जिसमें हमारा मर्ज है, जिसमें हमें तकलीफ है, उनसे हम प्रेम करते हैं. तो ये आत्मा जो है ना, आत्मा इसलिए प्रेम का आशय है. इससे बढ़कर के शास्त्रकारों ने अपने अनुभव से युक्ति के द्वारा जी किस प्रकार से समझाया है कि आपका प्रेम इसलिए आत्मा से है कि आत्मा सर्वाधिक आनंद वाली है. इसलिए देखिए पंचदशी में एक श्लोक आता है, इयम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यतः. इयम आत्मा, तो इयम आत्मा, इयम है ना स्त्रीलिंग है, और अयम आत्मा, इयम आत्मा आत्मा पुलिंग है. तो आप कहोगे इयम क्यों कहते हो, अयम आत्मा क्यों नहीं कहते हो? तो अयम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वह संबिद का प्रकरण चलना है. तो संबिद भी आत्मा ही है. तो जब संबिद कहेंगे तो स्त्रीलिंग होगी, तो प्रकरण प्राप्त इयम, वो जो संबित है ना, संबित रूप जो आत्मा है, ये परम प्रेमास्पद है. क्यों परम प्रेमास्पद है? यम आत्मा परानंद, क्योंकि पराकाष्ठा का आनंद यदि है तो इस आत्मा में है. आत्मा से बढ़कर के आनंद और कहीं कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, और कहीं मन आपका ठहर और टिक भी नहीं सकता है. तो देखिए ये जो षष्ठी उत्पन्न होती है, ये विविध प्रकार की भाषित होती है. एक दिन और उदाहरण में आपको कहा था कि देखो ये पहले बाष्प होता है, फिर जल होता है, फिर बर्फ होता है. बर्फ दीर्घ काल तक पड़ा रहता है तो ठोस रत्न बनता है. वो ठोस रत्न जो हथौड़े से भी नहीं टूटता है. अब वो बाष्प में और हथौड़े से न टूटने वाले वो रत्न में भेद तो दिख रहा है, पर विचार से भेद बाधित है. इसी प्रकार से ये सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है, परमात्मा से ये उत्पन्न हुई है, और ये जैसे उससे उत्पन्न होने वाली सृष्टि में भेद कुछ भी नहीं है. विचित्र बात है. क्या आप परमात्मा की अद्भुत लीला है? आप कहां रासलीला देखने जाते हो? यही रासलीला देखिए ना. एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज, क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता है? इतना बड़ा विशाल अनंत, उसमें पत्ते, अनंत शाखाएं, पुष्प, फल, टहनी, स्कंध है. बड़ा सा मोटा सा स्कंध निकल जाता है. एक छोटा सा जल का बिंदु, इसमें कठोर हड्डियां, दांत, रोम, चमड़ी, रक्त, नख, बात, पित्त, कप, यह आश्चर्य नहीं आपको लगता है? तो ये आपकी दृष्टि से सूझता कुछ है और होता कुछ है. वो विचार की दृष्टि से यदि आप सोचो तो ये सही सही मालूम पड़ता है। इस प्रकार से ये मंत्र में ये बात बताई है। देखिए आगे वाला मंत्र, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य। अब विराट का वर्णन करते हैं। नारायण नारायण। दिशा श्रोत्रे वाग्विदाश्च वेदाः, वाग्विव्रताश्च वेदाः, वायुः प्राणो हृदयम् विश्वमस्या पद्भ्याम पृथ्वी। एषा सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतर, एषा सर्वभूतांतरात्मा। ये अग्निर्मूर्धा, ये जो मूर्धा है भगवान का जो सिर है ना, ये अग्नि है, अग्नि। नरे नरे। चंद्र सूर्य चक्षुषी, और ये चंद्रमा और सूर्य भगवान के नेत्र हैं, भगवान के नेत्र हैं। और ये जो दिशाएं हैं भगवान के श्रोत्र हैं, और वेद जो है भगवान की वाणी है, विव्रत वाणी है, विव्रमते इति विव्रता। अब वायु प्राण, और वायु प्राण है, और विश्व से हृदय, ये सारा विश्व जो है परमात्मा का हृदय है। पद्भ्याम पृथ्वी, और पृथ्वी पैर है भगवान के, और ये सर्वभूत अंतरात्मा, और ये सब भूतों का अंतरात्मा है। अरे सबका तो अंतरात्मा न होगा तो सभी भूत शून्य हो जाएंगे, फिर तो किसी की सत्ता ही सिद्ध न होगी। तो ये किस प्रकार से देखिए, ये भगवान की जो मूर्धा है क्या है, अग्नि को बता रहे हैं। दिवलोक, अग्नि माने दिवलोक बताया, क्योंकि सिर में ही तो आंख होगी, तो दिवलोक अग्नि माने। यहां दिवलोक भाष्यकार ने कहा, अग्नि दिवलोका असौ भाव लोका गौतमाग्नि छंदोक उपनिषद में साफ साफ दिवलोक ही कहा है। ये प्रकरण वहां भी आया है। तो ये दिवलोक जो आकाश है, ये सिर भगवान का है, और इसी सिर में आंख चंद्रमा और सूर्य। देखिए अब देखो, भगवान को कभी चश्मा थोड़ी लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। हे भगवान, हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें जो हैं, इसमें तो चश्मा भी लगाना पड़ता है, इसमें तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। लेकिन भगवान की जो आंखें हैं उसमें चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ये जो श्रोत्र हैं भगवान की, क्या ये दिशाएं हैं? दिशाएं हैं, क्योंकि दिशाओं में ही दिशा, दिशा देवता हो गया श्रोत्र का, और उसमें ये पोलापन रहेगा तभी श्रोत्र ग्रहण कर सकेगा शब्द को। और ये जो वेद है, ये भगवान की वाणी है। कैसी वाणी है? तो बोलते हैं वाग्विदाश्च वेदाः, ये विव्रत, ये विस्तार से जो देखो, इसका कितना बड़ा विस्तार है कि चार तो वेद हैं, चत्वारो वेदाः, त्रयोलोकाः, इसके अंग हैं, वेद के अंग हैं, इसके उपांग भी हैं, और वेद भी हैं, वाक भी है, इतिहास भी है, पुराण भी है, स्मृति भी है, और तीनों लोकों में इसका प्रयोग होता है शब्द का। तो ये भगवान की वाणी वायु प्राणो, और ये जो वायु है यही प्राण है, और ये भगवान का जो विश्व है ये हृदय है जी, विश्व से हृदय हम, और पदभ्याम पृथ्वी, ये पैर पृथ्वी। तो ये भगवान के विराट रूप का वर्णन है। अभी भगवान के विराट रूप में हम भगवान से पृथक नहीं हैं। मैं पहले ऋषिकेश रहता था, एक श्री स्वामी दंडी स्वामी थे, उनका नाम था श्री स्वामी सच्चिदानंद जी, वहां रहता था। तो कहते थे कि तुमने ईश्वर को देखा है? जी हमने नहीं देखा। कि उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ईश्वर से तुम्हारा कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है? कि जे क्या सिद्ध होता है? रोटी हम मांग के लाते हैं, पानी हम भर के लाते हैं गंगा से, रोटी हम काली कमली से मांग के ला के खाते हैं। तो वो बोलते थे कि देख भैया, ये हमारे शरीर में शरीर ये हमारा पांच भूत का शरीर है और इसमें कितने कीड़े हैं ये बात साफ हो गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। आज सभी इस बात को आम रूप से जानते हैं। इसमें कितने कीड़े हैं? अनंत हैं। देखो आप, हमको खुशी होती है जब हमारे उसमें मोहर लगा देते हो तो हमें लगता है कि ठीक हम बोल रहे हैं। अनंत कीड़े हैं इसमें, तो वो कहां पैदा हुए हैं? हमारे अंदर, हमारे से उत्पन्न हुए हैं, हमारे को ही खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं? हमारे को खा रहे हैं। हमारे में श्वास, हमारी श्वास से उनकी श्वास चल रही है और हमारी रोटी से उनकी रोटी चल रही है। बोले वो मरेंगे तो आप ही मरेंगे, विचित्र बात है। तो बोले तुमने ईश्वर को देखा नहीं, जैसे तुम्हारे को ये पूर्ण रूप से ये तुम्हारे अंदर के कीड़े नहीं देख सकते हैं, पर हां उनको वेद मिल गया हो तो वेद का विवेक और विज्ञान यदि किसी से हो जाए कदाचित, तो उनको ईश्वर का स्वरूप उनको आ सकता है। पर हम तो वेद के विज्ञान को प्राप्त करके भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे हम वो बोलते थे कि तुम ईश्वर के शरीर के कीड़े हो, ईश्वर में पैदा हुए, ईश्वर को खा रहे हो, ईश्वर में रह रहे हो, ईश्वर में मर रहे हो, कहते हम ईश्वर नहीं जान रहे। ये जो समष्टि पंच महाभूत है ना, ये समष्टि पंच महाभूत ये यही तो नारायण माया उपाधिक परमात्मा है कि नहीं? जैसे ये शरीर हमारा 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 जो मैं जिसको विस्फुलंगा बताया है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, तो ये जीवात्मा का ये शरीर है। देखो प्रत्येक वस्तु में दो भाग होते हैं, एक सार होता है एक असार होता है। सार और असार दो होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पुष्प है, पुष्प में सुगंधी होती है जिसका इत्र बनाते हैं, निचोड़ लेते हैं, उसमें शहद भी होती है जो मक्खियां ले जाती हैं, और एक मोटा सा भाग होता है जो वो बेकार होता है। इसी प्रकार से आप गन्ना को देखिए, उसमें रस होता है और उसमें छिलका होता है, वो असार भाग है। दूध को देख लीजिए, एक भाग मट्ठा का होता है, एक भाग घी का होता है, दो दो भाग। फलों में देख लीजिए, एक भाग रस होगा, एक भाग छिलका गुठली होगा जो फेंक देते हो। तो ये शरीर में कोई सार नहीं है। शरीर में भी तो दो भाग हो जाएंगे, एक सार भाग होगा एक असार भाग होगा। तो सार क्या है? ये विश्व से हृदय है ना, भगवान कह रहे हैं कि जो विश्व है ये मेरा हृदय है। तो ये हृदय क्या करता है? ये धड़कन देता है, दुनिया को चला करके रखता है। तो ये सार इसमें क्या है? आत्मा है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। और असार क्या है? शरीर है। ये पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, जिसको आप इसको मैले के थैले को अपना स्वरूप समझते हो। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं अपने को शरीर है, बाबा जब ये परमात्मा अपने शरीर का पहले निषेध कर दिया फिर शरीर का वर्णन करते हैं। एक इसमें भाष्यकार लिखते हैं कि पहले ये शरीर नहीं है, माने पहले ये सृष्टि में कोई चीज नहीं है जो मन प्राण आदि उत्पन्न हो रहे हैं, ये पहले इनकी कोई स्थिति नहीं है। सदैव सोमेदमग्रासी तक नहीं, सद ही पहले था, यही बात तो कहते हैं। सत के अतिरिक्त और कोई चीज न थी। तो सत के अतिरिक्त जब कोई चीज थी नहीं तो परमात्मा से निकली भी कैसे? अच्छा आप सो जाते हो, जब सो जाते हो तो आप कभी अमेरिका में होते हैं, कभी भारत में होते हैं, कभी ईरान में होते हैं, कभी इंग्लैंड में होते हैं, कभी कहीं होते हैं। स्वप्न में कभी कोई वस्तु मिलती है, कभी कुछ वस्तु मिल जाती है, तो आप कोई कहां से मिल गए? आप तो अपनी मंजी में सोए हुए हैं, कहां से मिल गए? स्वप्न में मिल गए ना। तो जैसे कि आपको एक दिन बताया था कि भाई जो स्वप्न से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं वो झूठी हैं कि सच हैं, तो झूठी बोलते हो, ये तो प्रसिद्ध बात है। लेकिन एक बात अप्रसिद्ध है, वो है यह कि आप से भिन्न है कि आप ही हैं, ये बात, ये एक प्रश्न है। तो यदि कहो कि नहीं हमारे से भिन्न है, तो इतने लोगों को दुनिया में जब स्वप्न हो रहा है और स्वप्न भिन्न होता है तो किसी को तो कहता स्वप्न का पदार्थ कि हमें को भी साथ ले चल बाहर, पर अभी तक तो किसी को कहा नहीं है स्वप्न के जो पदार्थ जिनको सच मान रहे हो, अपने से भिन्न मान रहे हो। अपने से भिन्न मानोगे तो उनकी भी कोई स्थिति होगी, सत्ता होगी, तब आपके आने पर वो वहां होना चाहिए। आपके आने पर, बाहर जागने पर वह तब नहीं होते हैं कि जब आप वही बने हों वो, और आप इस अवस्था में आ जाएं तो नहीं मिलेंगे। पर जब आपसे भिन्न होंगे तो आप जागृत में आएंगे, तो स्वप्न वाले पदार्थ बाहर तो होना चाहिए। पर इसका अर्थ यह है कि स्वप्न में जो देखे गए पदार्थ हैं वो सब आप ही बने थे, ऐसे बताते हैं। ये सब आपके मन की ही कल्पना संस्कार के अनुसार थी, मन से कोई भिन्न न था। वहां के जो जीव हैं, वहां के जो प्राणी हैं, सब मन ही बना हुआ था। तो इसी प्रकार से ये जो संसार है ये परमात्मा में सबका सब कल्पित है जी। एक बात है, आप घबराइएगा नहीं, हमें तो यहां आकर के बंबई में आके बड़ी खुशी होती है। एक बंबई की विशेषता है, प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन यहां एक विशेषता है कि हमको बड़ा ताजुब और आश्चर्य होता है कभी कभी यहीं बैठ करके। क्या आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग हैं जो अभी ग्रंथ के माध्यम से हमें स्वाध्याय करा दो, ग्रंथ के माध्यम से ही प्रवचन करो। अरे बाबा, आप देखो और जगह नौटंकी नाटक से ज्यादा कुछ भी नहीं सुनना चाहते। ये बात हम कहीं और दूसरे मंच में बोल दें तो एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहेगा, वो भी मुश्किल से कोई परिस्थिति बस रहेगा। एक बार एक सभा हो रही थी, सभा, कोई महात्मा था तो वेदांत बोलते थे। एक महात्मा ऋषिकेश में है, हंसानंद जी महाराज, वो वेदांत बोलते हैं। चाहे कोई बच्चा हो, छोटा सा, चाहे वो समझ रहा हो चाहे ना समझ रहा है, बोलेंगे वेदांत है, वो उपनिषद बोलेंगे। एक जगह सभा हो रही थी, वो बोल रहे थे, आंख बंद करके बोले जा रहे थे, सब कल्पित है, परमात्मा सत्य है, उसी को प्राप्त करना चाहिए। धीरे धीरे सारी जनता चली गई। रात का समय था, एक लंप के पास व्यक्ति बैठा हुआ था, खोल के आंख देखा तो बोले कि अरे यहां तो कोई है ही नहीं। उससे पूछा कि अरे भाई ये कहां गए? बोले ये तो सब चले गए। बोले अरे धन्यवाद, आपको तो हमारी बात समझ में आई जो आप बैठे रहे। बोले महाराज, हमको कोई बात समझ में नहीं आई, ये लालटेन हमारी है इसलिए बैठा हूं मैं। तो यहां तो इसलिए लोग बैठे भी हैं नारायण, हमको ताजुब लगता है, हम कहीं नहीं बोलते और कहीं किसी वक्ता को भी हम नहीं सुन देखते। जैसे बंबई में बोलते हैं, मैं यहां करीब करीब वर्ष में तो आ ही जाता हूं, कभी ब्रह्म सूत्र का पाठ, कभी गीता का, कभी कुछ स्वाध्याय, तो हमको यहां आने से खुशी होती है कि बंबई है। देखो भाई, अपने जो मूल ग्रंथ हैं उन मूल ग्रंथों से भले ही उनको भले ही ज्यादा पल्ले ना पड़ता हो, पर उनकी निष्ठा कितनी है शास्त्र में, इसका भी फल होगा। आपने सुना होगा संतनु महाराज का, नारायण ये भीष्म पितामह संतनु जी पिंडदान कर रहे थे ना, कई जगह कथा अलग अलग ढंग से आती है। तो बोले कि पिताजी का हाथ निकल आया, तो बोले कि जब पिताजी का हाथ निकल आया तो पिंडदान तो हाथ में ही दे देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भई पिताजी का हाथ संतनु का निकल आया है, पिंड को कहां दूं, बेदी में दूं कि हाथ में दूं? ये उनकी निष्ठा थी भीतम पितामह की। पंडितों ने कहा कि नहीं नहीं, धोखा मत करना, पिंडदान तो आप हाथ में न देना, बेदी में ही देना। नहीं तो ये पिंडदान की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर पिता का हाथ तो नहीं निकलेगा, परिस्थिति कुछ हो सकती है, तो ये पिंड की परंपरा न समाप्त हो। पंडितों के कहने पर शास्त्र के अनुसार उन्होंने वेदी में दिया पिंड। आपने सुना होगा संतनु महाराज खुश हो गए, तुम्हारी शास्त्र निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। सुना है कि नहीं? तो आपकी शास्त्र में निष्ठा है, शास्त्र निष्ठा का मतलब परमात्मा में निष्ठा है। अरे वेद, ये वेद परमात्मा की वाणी है। तो इस प्रकार से पहले बताया कि परमात्मा से किस प्रकार से सृष्टि होती है। जैसे बोले थे कि यथा औषधया पृथिव्याम औषधया भवंती, पृथ्वी से जैसे औषधि उत्पन्न होती हैं और औषधियां पृथ्वी से भिन्न नहीं होती हैं। जो चीज जिससे उत्पन्न होगी वह उससे भिन्न नहीं होगी, जो चीज जिससे बनेगी वो चीज वहीं विश्राम को प्राप्त करेगी, उससे अलग यदि जाने का प्रयत्न करेगी तो उसे स्वप्न में विश्राम न मिलेगा। जो वस्तु जिससे बनती है उसी की ओर आकर्षण भी उसका होता है। आप सदरूप चिद्रूप आनंद रूप हैं, इसीलिए इससे ज्यादा कहीं समझौता आपके मन में नहीं है, पर भ्रांति बस आपको लगता है यहां सत्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यहां आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भ्रांति बस। आप सत से नीचे और कोई चीज नहीं चाहते हैं, परमात्मा सुख से नीचे का सुख आपको संतुष्ट नहीं कर सकेगा। आपका मन कहीं न नोट के बंडलों में ठहर सकेगा, न कहीं भोग में ठहर सकेगा, कहां ठहरता बताओ? फटाफट प्राप्त किया चल देता है, मन कहीं नहीं जोता है, किसी से नहीं अटैच होता है। मन तो क्यों नहीं होता है कि जो ढूंढ रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। मैंने ये कुल मिलाकर के कहना चाहता हूं कि परमात्मा सुख से नीचे और कोई सुख संतुष्ट ना करेगा, आपको विश्राम ना दे सकेगा। तो परमात्मा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति इसलिए बता रहे हैं, सृष्टि के माध्यम से बताया जा रहा है कि देखो परमात्मा है जिससे ये सृष्टि निकली हुई है। और ये भी आपको बताना चाहते हैं, जो आपको सत्यत्व की भ्रांति है, ये टीका और भाष्यों के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि ये न तो पहले थे और न बाद में रहेंगे। तो बीच में जो चीज होती है झूठी होती है। अरे जब परमात्मा सत था तो ये सृष्टि न थी, परमात्मा में नहीं थी, नहीं तो सत क्यों कहते? अच्छा, तो फिर ये बाद में रहेगी कि नहीं? कि नहीं बाद में भी नहीं रहेगी, तो ये बीच में कहां से आएगी? जैसे एक उदाहरण के लिए मोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि घड़ा है, घड़ा घड़ा है कि नहीं? तो उत्पत्ति के पहले मिट्टी थी और घट में नमक रख दिया या कोई विशेष कारण से गल गया, सड़ गया, मिट्टी में मिल गया, टूट गया, तो क्या हुआ? मिट्टी हो गया। अब बीच में जो आप घड़ा उसका आकार देख रहे थे, नाम जो देख रहे थे, वो था कि नहीं था? अरे भाई वो कहां से आया? उसकी तो आपने मिट्टी की आकृति बना दी और मिट्टी का ही नाम रख दिया घड़ा। तो इसी प्रकार से यहां पहले नहीं था ये संसार, और बाद में ये भाष्य में लिखा हुआ है कि पहले संसार नहीं था, ये संसार नहीं, पहले ये मन प्राण नहीं था वहां, जो संसार का कारण है। कहीं आपको ये भ्रम हो जाए कि संसार नहीं था, ये तो हम भी जानते हैं। अरे नहीं, ये मन प्राण की उत्पत्ति बता रहे हैं, ये भी नहीं थी वो, और बाद में भी नहीं रहेंगे, तो बीच में कहां से आ गए? बीच में भी नहीं है, झूठी बात है। तो आप देखिए, अब ये आपको कहना चाहता हूं, 30 मिनट हो गया है, पर ये कहना चाहता हूं कि ये जो दिख रहा है ये भी सत परमात्मा ही है। एक ब्रह्मसूत्र का सूत्र आपको सुना देता हूं, प्रकृतिश्चा प्रतिज्ञा दृष्टांतानुप्रोधात, दृष्टांत के अनुरोध से हम कहते हैं कि प्रकृति भी ब्रह्म ही है, कैसे कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। तो तभी ये संभव हो सकता है कि अभी एक ही चीज अनेक रूपों में हो गए, तब किसी एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा। अब अगला प्रसंग आपकी सेवा में, कल समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।